कंठम अविरत पुरुष परिचर्या भगवती,
उसको देखने के बाद ही वे सुखी होते थे, उसके बिना अपने को दुखी पाते थे। पूजा में एक बहुत बड़ा दोष है, जैसे मान लीजिए कोई मंगल आरती में आरती कर रहा हो और वहां से उतर करके जाए बाहर रोड पर कुछ देखे में, तो उसी दिन से उसको डिसमिस कर दिया जाएगा, ये क्या पूजा है। लेकिन राजर्षि भरत पूजा के बीच में जा जाकर के देखते अंतराले और दो बार शब्द का प्रयोग होगा, उठाया उठाए उठ करके, मतलब बहुत बार करते थे इसलिए द्विरुक्ति कही गई है, दो बार उठाया उठाए जदा इन अभिचक्षित, जब इसको देखते थे तब ही उनको शांति मिलती थी और देखते ही आशीर्वाद बरसाने लगते थे। ते सर्वतः स्वस्ति स्था, तुम्हारा सब तरह से कल्याण हो बेटा, इस आशीर्वाद में है क्या। वो माला उठाकर जब पूरे करोगे, अब वो भक्त होने वाला है, किसी को भी आशीर्वाद देना हो तो सबसे बड़ा आशीर्वाद है कृष्ण मति रस्तु, कृष्ण में तुम्हारी मति लगी रहे, उसकी मति तो कृष्ण में लगने वाली थी ना, फिर भी आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम्हारी सब तरह से, तुम्हारा सब तरह से मंगल हो। क्यों आशीर्वाद दे रहे थे कि तब दर्शनानंद प्राप्ति अर्थ, उसके दर्शन के आनंद की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दे रहे थे कि यह सुख से रहेगा तो इसको देखकर मैं सुखी होंगे, ये आशीर्वाद देने का मुख्य भाव। चिरंजीवी रहो, इसी तरह सुखी रहो और हमको आनंद दो। और यदि कदाचित वह अंग्रेज आश्रम से थोड़ा दूर चला जाता था, नहीं दिखाई पड़ता था, तो अन्यदा, अन्यदा मतलब नहीं दिखाई पड़ने पर, वो नहीं देख पाते थे अदर्शन होने पर, तो भीषण उद्विग्न मना, बहुत अधिक उद्विग्न मन हो जाता, उनका मन बेचैन हो जाता था, अतिशयन उद्वेग मानस नष्ट द्रगणे व कृपण। एक निर्धन व्यक्ति की तरह जिसका सारा धन नष्ट हो गया वो मिल करके और इसके लिए वो रोए विलाप करे, इस तरह से नष्ट धन की तरह दीन हो जाते थे। अब वो बहुत दूर नहीं चला गया है, केवल दिखाई नहीं पड़ रहा है, बस उसी पर बेचैन हो जाते थे। और करुण अति तरसेण हरिण कूड़क विरह विह्वल हृदय संताप, करुण दशा हो जाते थे उनकी, वे रोने लगते थे अति तृष्णा के कारण, अति स्नेह के कारण, मतलब तो उसके दर्शन की तृष्णा प्यास बढ़ जाती थी और उस हरिण कूड़क हरिण बालक के विरह से विह्वल हृदय में संताप भर जाता था, हृदय जलने लगता था उसके वियोग में। इस तरह का भाव वास्तव में भगवान के लिए होना चाहिए, क्षण भर देखे बिना न रह जाए। तो तमेव अनुशोचन, उसी के विषय में शोक करते हुए चिंतन करते हुए, कि कसमलम महदभिगम्भता इति हुआच, बहुत अधिक हृदय में कसमल होता था, दुख होता था, मोह छा जाता था और इस तरह से भी बकने लगते थे, इति हुआच यह कहने लगते थे। यह छोटा सा नमूना दिया गया है कि क्या क्या कहते थे, ऐसे दिन भर कहते रहते थे, कुछ नमूना दिया जा रहा है हरिण के विरह में ये क्या कहते थे। अहो अपि बत सवय कृपण एड़ बालको, यही है ना, अपि बत सवय कृपण एड़ बालको मृत हरिण सुत, अहो मम अनार्जस्य सठ किरात सठ किरात मते अकृत सुकृतस्य आत्म प्रत्ययेन तद विगारेण सुजन इव आगमिष्यति। अहो अपि ये संभावना में क्या, वह एड़ बालक वो हरि बालक क्या मेरे दोषों को न गिनते हुए, मेरे दोषों पर दृष्टि न डालकर क्या कभी सृजन की तरह, सज्जन की तरह पुनः मेरे पास आएगा? वास्तव में मैं दुष्ट हूं, मैं पापी हूं, मैं अच्छी तरह से उसका केयर नहीं किया, तो सारा भजन पूजन छोड़ करके उसी में लगे हैं, लेकिन उसकी सेवा करने में तृप्ति नहीं हो रही है। कहते हैं मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया, समयपत कृपणा इण बाल को, वो बेचारा कृपण है, उसका कोई सहारा नहीं है। और सबसे बड़ा आश्रय माँ होती है, तो माँ भी मर चुकी है, मृत हरिणी सुपक, मरी हुई हरिणी का पुत्र, माँ मर गई है, कोई आश्रय नहीं है, इसलिए कृपण है, मेरे अतिरिक्त उसका कोई आश्रय नहीं है। लेकिन मैं अनार्ज हूँ, वास्तव मैं अनार्ज हूँ, दुर्जन हूँ, उसके पालन पोषण लालन और प्रीणन में मैं उपेक्षा किया, इसी से वो चला गया, मैं ध्यान नहीं दिया, जितनी सेवा करनी चाहिए थी उसकी, उसने उसका शतांश भी मैं नहीं किया, मैं अनार्ज हूं। सठ किरात मते, हमारी बुद्धि जो है वो सठ वंचक किरात की तरह, जैसे किरात या बहेलिए किसी हरिण को फंसा लेते हैं और उसको बाण मारते हैं, तो इस तरह से मैं इसको अपने पास लाया लेकिन उसकी वंचना किया, ला करके कुछ भी सेवा नहीं किया, हमारी सेवा से अप्रसन्न होकर, हमारी उपेक्षा से रंज होकर के वो यहां से चला गया, वो कहीं नहीं गया है और न तो कभी इस तरह की बात सोचता है। जहां आसक्ति होती है तो वहां पर मनुष्य अपनी कमी देखता है और अपने प्रेमास्पद के केवल गुण देखता है, ये स्वभाव है। तो अपने को सठ किरात मति कर दे, सठ का अर्थ होता है वंचक, ठगने वाला, धूर, और किरात मतलब व्याध, व्याध जैसी मति मेरी है। और वास्तविक बात यह है कि अकृत सुकृतस्य, मैं भाग्यहीन व्यक्ति, मैंने अपने जीवन में कभी सुकृत नहीं किया, अगर सुकृत किया होता तो वह हरिण बालक मेरे पास रहता, जो सुकृति होगा उसी के पास वो रह सकता है, मेरे जैसे फूटे हुए भाग्य वाले के पास नहीं रह सकता। मतलब उसका अपने पास रहना बहुत बड़ा अपना सौभाग्य मान दो। तो अकृत सुकृत, मैंने सुकृत नहीं किया, अकृत नहीं किया, न मैं दान किया न पुण्य किया, अगर किया होता तो वो हरिण बच्चा मेरे पास रहता, तो मैं भाग्यहीन हूं। लेकिन फिर भी वह तो महान है, मैं बुरा व्यक्ति हूं लेकिन वह महान है। तो मम तब आत्म प्रत्यय हमको अपना जैसा मान करके आत्मवत मन्यते जगत, इस न्याय से प्रत्येक व्यक्ति जगत को अपने जैसा देखता है, तो वह सुशील है, वह आर्ज है, वह सुकृत किया है, और वह एक सज्जन है, साधु है, तो हमको भी साधु समझेगा जरूर। वह बेचारा अदोषदर्शी है, वो कभी मेरा दोष नहीं देखेगा, मुझे ऐसा लगता है। आत्म प्रत्यय, अपने जैसा प्रतिया करके, अपने जैसा मान करके वो जरूर मेरे पास आएगा, यदि मैं अब आने लायक काम किया नहीं मैं इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसको नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी वो अपने जैसा हमको मानेगा, तो जिसके हृदय में जो बात होती है वही बात मनुष्य दूसरों में देखता है। तो राजा श्री भरत हरिण में गुण बुद्धि कर रहे हैं और अपने में दोष बुद्धि। वास्तव में जब आसक्ति होती है या प्रेम होता है तो यही स्वभाव प्रकट होता है, हमेशा यही लगता है कि मैं कुछ भी सेवा नहीं किया, मैं कुछ भी संतोष विधान नहीं किया अपने प्रिय का, कुछ नहीं किया, और सब कुछ कर चुके, इस नगण पशु को रात दिन सहलाते थे, सेवा करते थे, लेकिन आज कह रहे हैं कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन फिर भी वह हमारे जैसे अविश्वास से पर भी विश्वास करे, मैं विश्वास करने लायक नहीं, लेकिन फिर भी वह सज्जन है, वह अपने हृदय से ही मुझको अच्छा समझेगा, कृत विश्रम हो, वो मुझ में विश्वास करता है और विश्वास करके सृजन है वह अगण हमारे दुर्व्यवहार पर विचार न करके उसको न गिन करके वो आएगा जरूर। क्या वो आएगा? अपनी आगमिष्यति, हे भगवान क्या वो आएगा? जरूर आएगा, क्योंकि वो सृजन, वो सुंदर जन है, सज्जन हमारे जैसा धूर्त, हमारे जैसा कपटी या निर्दयी नहीं, वह सूजन है, जरूर हमारे दोषों को क्षमा करके वो हमारा हरिण राजकुमार आएगा निश्चित। क्या है शक्ति है, एक नमूना दिया गया तो सबकी यही दशा है वास्तव में संसार में, कम हो या अधिक हो, किसी न किसी में गुण बुद्धि है। मन सोचता है कि और अधिक हम उसे सेटिस्फाई करें, और करें और करें, और जहां प्रेम नहीं होता है वहां मनुष्य अपने में गुण देखता है और जिसके द्रोह है उसमें दुर्गुण देखता है, उसके गुणों में भी दोष निकालता है, उसको असूया कहते हैं। श्रीमद् भागवत पढ़ने का अधिकार उन्हीं लोगों को है जिनके हृदय में मत्सरता नहीं है, ये पहले ही कहा गया है, तो अधिकार दे धर्म अपरोजित कहे तो कर्म हो निर्मत सराणाम सतर्म, जो दूसरों के गुण में दोष नहीं निकालते हैं, द्वेष नहीं करते हैं, उनके लिए श्रीमद् भागवत हम। जब भगवान से प्रेम हो जाता है तब भागवत का आनंद आता है, कहने का आशय ये तो अपनी संभावना में है, क्या वह आएगा? तो फिर कहते अवश्य आएगा, जब हमारे तरफ देखेगा तब नहीं आएगा, लेकिन अपने तरफ देखेगा तो जरूर आएगा। तो श्रीपाद रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं कि अपने अजोग्य देखी मने पाऊं क्षोभ, तथापि तुम्हार गुण उपजय लोग। मैं जब अपने को देखता हूं तब मेरे मन में बड़ी बेचैनी होती है कि मैं कैसे चैतन्य महाप्रभु का दास बनूंगा, लेकिन जब आपका गुण देखता हूं तब जरूर इच्छा होती है कि आपका दास बन जाऊं। तो देखिए ये प्रेम की पहचान। वो कहते हैं कि हरिण अपने गुण से आएगा, हमारे तरफ हमारे दोषों को वो देखेगा नहीं, यदि मुझने केवल दोष ही दोष भरे पड़े। और अब अपने सारे भजन पूजन की शक्ति लगा करके भगवान से वरदान मांग रहे हैं कि हे कृष्ण, यदि मैंने जीवन में कुछ भी आपका भजन किया हो तो उस भजन के प्रताप से हमारा हरिण शावक सुरक्षित रहे, कहीं भी हो मेरा बेटा सुरक्षित रहे। ये देखिए मतलब भगवान कृष्ण या उनका भजन उस हरिण से कई गुना नीचे हो गए। प्रमुख बने सस्पाणी चरंतम देव गुप्तम द्रक्षण, हे भगवान अस्मिन आश्रम उपबने, इस अपने आश्रम के उपबन में क्षमेर सुखपूर्वक कुशलपूर्वक देवगुप्तम हमारे इष्ट देव श्रीकृष्ण के द्वारा सुरक्षित मृग को सस्पाणी चरंतम द्रक्ष्यामी, हरी हरी दूध चरते हुए क्या देखूंगा? फिर सस्पाणी चरंतम मतलब जब पशु चरते हैं खाते हैं तो इसका मतलब स्वस्थ है, जो नहीं खाते हैं तो इसका मतलब अस्वस्थ है, कोई रोग हो गया। तो देव गुप्तम का अर्थ है देवेन मदिष्ट देवेन कृष्णेन गुप्तम रक्षितम, निश्चित ही हमारे इष्ट देव भगवान कृष्ण उसकी रक्षा करेंगे, उसको बचाएंगे। तो क्या मैं अपने इष्ट देव कृष्ण द्वारा रक्षित उस मृग को अपने आश्रम के उपवन में हरी हरी स्वस्थ में डूब चढ़ते हुए देखूंगा? और क्या पत्नी या बच्चा दो ही प्रेम के विषय हूं संसार में। और तो बहुत दूर का संबंध हो जाता है। मनोरथ होता है भगवान क्या वो आएगी तो उसके साथ स्टूडियो में जाकर एक साथ फोटो खिंचाऊंगा, क्या ऐसा हमारे जीवन में संयोग आएगा, यही चिंतन होता रहता है, चाहे वो बच्चे का हो या बच्चे की माँ का हो। दो बंधन बहुत जबरदस्त है उस जगत में, और भगवान ने ऐसा संबंध बनाया है कि उसे छोड़ा भी नहीं जा सकता। तप्त इच्छु चर्मण कहते हैं इसको, तप्त ईख को जैसे चबाता है कोई तो मीठा लगता है तो छोड़ने की इच्छा नहीं करती है, लेकिन जब वो जलता है मुंह तो छोड़ने की इच्छा करती है, तो दोनों के बीच में फंसा रहते हैं। जब जलता है मुख तो मन करता है कि ईख को फेंक दो, लेकिन रस उसका मीठा होता है फेंक नहीं पाता है। ये दशा गृहस्थों की होती है, तब तो एक चीज चौरबा। तो इस तरह का मनोरथ है आसक्त व्यक्ति करता रहता है, क्या मैं कोमल कोमल तृण को चढ़ते हुए उस बच्चे को इस आश्रम के उत्पन्न में देखूंगा। और फिर कह रहे हैं कि यदि भगवान रक्षा नहीं करेंगे उसकी, तब तो कहीं उसके भगेरिया या सिंह या सुअर या कुत्ते न खा जाए। हाय हाय, अगर प्रिय में अनिष्ट की आशंका होती है, इसके अनिष्ट शंका जो तो बंधुओं का हृदय होता है वो अनिष्ट संति बंधु हृदय नहीं, जिसके प्रति प्रेम होता है उसके अनिष्ट की आशंका बनी रहती है, कहीं अनिष्ट न हो जाए, अभी मैं इसको ट्रेन से छोड़ रहा हूं कहीं ट्रेन दुर्घटना न हो जाए मनुष्य सोचता रहता है। तो ठीक से जाना, सुरक्षित जाना, विदा देने जाता है और कई कई चेतावनी देता है, नियम देता है, भगवान से प्रार्थना करता है, तो पहुंचते ही फोन करना, पहुंचते ही खत डालना, से पता लगे कि तुम कुशल से पहुंच गए। अरे कुशल से पहुंचेगा इसमें क्या संदेह लेकिन फिर भी बंधुओं का हृदय अनिष्ट की आशंका से भरा रहता है। और यह भी सत्य है कि जीवत करनाथ होती तदीक्षितो बने गृह विगुप्तो से हतों में जीवती। भागवत के सप्तम स्कंध में लिखा गया है कि भगवान रक्षा करे किसी की तो वन में फेंका हुआ व्यक्ति भी जीवित रहेगा, और भगवान यदि उपेक्षा कर दें तो घर में सिक्योरिटी के अंदर रहने वाला व्यक्ति ताला दे करके भीतर रहने वाला भी मार दिया जाता है, मर जाता है, भगवान नहीं चाहते हैं। तो कितने लोग बाहर सोते हैं, घूमते रहते हैं, जंगल में रहते हैं, लेकिन वो फिर भी जीवित हैं। और बहुत से लोग सैकड़ों सिक्योरिटी के अंदर रहते हैं लेकिन मार दिए जाते हैं। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति केनेडी 200 लोगों के बीच में था और मार दिया गया। क्या कोई रक्षा कर सकता है, सिक्योरिटी कहते हैं, सिक्योरिटी सुरक्षा, ये भगवान रक्षा करते हैं तब रक्षा होते हैं। तो राजर्षि भरत इस सिद्धांत को जानते थे, तो फिर सोचते हैं कि यदि भगवान नहीं रक्षा करेंगे तो कहीं अपिल न ब्रिक शाला ब्रिको अन्य तमो व नरो व भक्षय थे, यदि भगवान नहीं रक्षा करेंगे तो कहीं मेरे गरीब शावक को ब्रिक न खा जाए, भेड़िया न खा जाए, अथवा साला ब्रिक कुत्ता को कहते हैं, कुत्ते भी बड़े बलवान होते हैं, हरिण के बच्चों को खा जाते हैं, बड़े बड़े हरिण को ही पकड़ लेते हैं, कहीं कुत्ते न खा जाए, या अन्य तमो हुआ न एक चरह मतलब जुट चरह जो अकेले नहीं चलते हैं, झुंड में चलते हैं, सुअर, कहीं सुअर न खा जाए उसको, और एक तरह कहीं सिंह न खा जाए। वन में तो ये सब घूमते ही रहते हैं, झुंड के झुंड सुअर घूमते हैं और सिंह घूमते हैं, अकेले इधर उधर कुत्ता घूमते हैं, भेड़िया घूमते हैं, हाय भगवान कहीं उसको ये सब खा न जाए, मुझे तो लगता है कि खा ही गए, अब बचा नहीं होगा इस तरह आपका शोक कर रहे हैं। ऐसा सोचते सोचते तब तक शाम हो गई, भगवान सूर्य जब डूबने को हो गए तो दिन भर तो कुछ कुछ संतोष था, लेकिन आप सोचने लगे कि हाय हाय अब तो ये भगवान सूर्य भी डूब रहे हैं तो रात में क्या होगा, जब दिन में नहीं मिला तो रात में तो उसका पता नहीं चलेगा। रात में भयानक जंतु निकलते हैं वन में, सर्प बाघ सिंह सब रात में निकलते हैं, दिन में वे अपनी मान में छिपे रहते हैं, यहां तक भूख लगी रहती है फिर भी वे छिपे रहते हैं और रात होते ही नहीं निकलते। जब सूर्य की ओर देखे तो सूर्य बिल्कुल अस्ताचल पहुंच चुके थे तो कहते हैं निम्लो सती हो भगवान, भगवान सूर्य भी डूब रहे हैं। हाय हाय निम्लोचती मतलब अस्त हो रहे हैं, भगवान समस्त जगत को प्रकाश देने वाले सकल जगत हेमोदयक सकल जगत के हित के लिए जिनका उदय होता है, क्षेम के लिए जिनका उदय होता है, वे त्रयात्मा वेदों के तीन वेदों में जो कर्मकांड है उसके प्रणेता भगवान सूर्य भी अस्त होने जा रहे हैं। लेकिन मम मृग वधु न्यास न आगच्छति, मृग वधु का धरोहर वो बच्चा मेरे पास नहीं आया। जैसे धरोहर का न्यास जैसे लगता है हरिणी ने इनको दिया था कि आप ही इसके पापा हैं इसकी रक्षा कीजिए, तो मैं तो अब जा रही हूं पर लोग ऐसा ही मान रहे थे, सारे मनीमन मान चुके थे वो मेरी पत्नी थी हरिणी, किसी जन्म में रही होगी इस जन्म में नहीं लेकिन किसी जन्म में वो मेरी पत्नी रही होगी और ये मेरा पुत्र है, यही भाव था इसका। तो इसीलिए कहते मृग वधु न्यास, इस मृग पत्नी का न्यास धरोहर उसमें मुझे रखा था, और धरोहर की यदि रक्षा कोई नहीं कर पाता है तो पापी माना जाता है। किसी का धरोहर कभी नहीं हड़पना चाहिए, कभी नहीं खाना चाहिए, तो विश्वास उसे कहते हैं न्यास। विश्वास विश्वास करके कोई कुछ दिया है तो आप उसकी रक्षा करेंगे या उसका पालन करेंगे, तो यदि आप ले रहे हैं तो उसकी रक्षा करनी चाहिए, कभी विश्वास का खंडन नहीं करना चाहिए, विश्वासघात ही नहीं बनना चाहिए। महाभारत में एक कथा है कि एक बार एक सियार जा रहा था एक आदमी का मांस खाने के लिए, एक आदमी मरा हुआ था मरघट पर, वो जा रहा था मांस खाने के लिए तो गिद्ध ऊपर बैठा था एक वृक्ष पर, वो कहा कि अरे सियार अरे उसका मत मांस खाओ, उसका मांस मत खाओ। तो सियार कहता क्यों नहीं खाऊंगा, ये कोई विश्वासघाती थोड़े है। गिद्ध बोला हाँ हाँ विश्वासघाती है, तुमको पता नहीं है विश्वासघाती आदमी। तो बाद में उसका इतिहास बताया गिद्ध, तब वो सिया छी छी करके चला गया, अरे तब नहीं खाऊंगा, भले दस दिन भूखा रहूंगा लेकिन विश्वासघाती का मांस नहीं खाऊंगा। इस तरह से चला गया। ये महाभारत में भीष्म पितामह कथा को है महाराज भोजपुरी का, विश्वासघात। राजर्षि परीक्षित मान राजर्षि भरत मान रहे हैं कि उस मृग वधु ने एक प्रकार से मुझे धरोहर दिया, मैं जप कर रहा था मेरे सामने प्रसव हुआ तो एक प्रकार से उसने मुझे दिया। क्या तो क्या मान लेते हैं आज अब बताइए, इस तरह से कोई हरिण में असक्त हो सकता है तो अपने बच्चे में असक्त होना कौन बुरी चीज है, वो तो स्वाभाविक है, वो तो भगवान ने संबंध भी दिया। लेकिन इस तरह से अपान सोचना मृगवधु का न्यास है वो अभी नहीं आया, तो भगवान सूर्य के लिए कह रहे हैं वेद त्रय आत्मा स्वरूपम जस्य, तीनों वेद ही जिनका स्वरूप है। अर्थात कहने का आशय यह है कि भगवान सूर्य जब उगते हैं तो वेदों कर्मों का अनुष्ठान होता है, दिन में यज्ञ होता है, हवन किया जाता है, मंत्र पढ़ा जाता है, तो इससे उच्च लोक मिलता है, लेकिन मैं ही इस जगत में ऐसा हूं जो जो वेदोक्त धर्म से विमुख रहा है, जो कितना बड़ा बड़ा जग किए हैं, लेकिन आज कह रहे हैं कि मैं कोई भी वेद के अनुसार काम नहीं किया, मैं बुरा व्यक्ति हूं, इसीलिए वो नहीं आ पाया। यदि मैं धर्म किया होता तो आया होता। और फिर कह रहे हैं, हे जगत के चक्षु, हे इस विश्व की आंख, हे भगवान सूर्य, आप जब उगते हैं तो सबको आंख देते हैं, सभी देखने लगते हैं, लेकिन आपके रहते हुए भी हमारे लिए चारों तरफ अंधार है। उस मृग वधु मृग बच्चे के बिना हमारे लिए चारों तरफ अंधकार है। और हाय, आप कृपा करके रुक जाइए, कृपा करके रुक जाइए, थोड़ी देर में मैं इसको खोज लूंगा, इसके बाद आप अस्त होइएगा। जो सकल जगत क्षेमोदय, सबका आप हित करने के लिए उदय लेते हैं, तो इस भरत का भी हित कीजिए। या आप तो अपने किरण करों से, अपने नेत्रों से देख रहे होंगे अपने किरण नेत्रों से कि वो मेरा बच्चा कहाँ है, तो कृपया आप ही बता दीजिए वो कहाँ है। भगवान सूर्य की किरण सर्वत्र है, तो वो कह रहे हैं कि आप तो जानते होंगे कि वो कहाँ है, तो आप ही कृपया फोन कर दीजिए वो कहाँ है, बता दीजिए। इस तरह से इसको कहते हैं प्रलाप, आसक्ति के कारण मैं दुर्भाग्य हूं। प्रेमरई तद गुणम उत्कीर्तन विलपति, भगवान दीपिका कहती है प्रेम के कारण ही उसके गुणों को गाते हुए अब कहते हैं, अपि स्वित अकृत सुकृतम आदत्य नाम सुखिष्यति हरिण राजकुमार, विविध रुचिर दर्शनीय निज मृगदारक विनोदय असंतोषम स्वानम अपनुदम। क्या वह हरिण राजकुमार मेरे पास आएगा? तो अब राजकुमार कह रहे हैं, ये रहे हैं राजा और इसी को ये अपना पुत्र मान रहे हैं। राजकुमार हरिण राजकुमार, इसे अकृत सुकृत, मैंने सुकृत नहीं किया है, मैं तो दुर्जन हूं, पापी हूं, दुष्कृति हूं, लेकिन फिर भी क्या वो हरिण राजकुमार आकर के मुझे सुख देगा? सुखिष्यति, क्या आकर के मुझे सुख देगा? किस प्रकार? विविध रुचिर दर्शनीय निज मृगदारक विनोदय, उसके जो मृगदारक विनोद हैं, मृग बालक के उचित खेल कूद, फुदकना, दौड़ना, चक्कर लगाना, ये सब क्या मैं उसके इस रुचिर विहार को देखूंगा? इन सबके द्वारा क्या वो अपने स्वजनों का मेरा असंतोष दूर करते हुए आएगा? हरिण का देखना या हरिण का चलना, ये कौन बहुत रुचिर है? रुचि, रुचि को आते हैं टेस्ट को, स्वाद को, तो विविध रुचि दर्शनीय, रुचि और देखने लायक। इस संसार में यदि कुछ भी देखने लायक है तो उस हरिण का चलना, देखना, घास चरना और मुझे सिंह से खुजलाना, यही रुचि है, यही दर्शनीय है। इसी से देखने लायक बस वही है बच्चा। मृगदारक विनोदय, मृग बालक विनोद, स्वाभाविक ही जो बच्चे होते हैं पशुओं को खुदकते हैं, खेलते हैं, जब गाय के छोटे छोटे बच्चे अस्थिर नहीं रहते हैं, वो दौड़ते हैं, घूमते हैं, तो मृग भी बहुत तेज गति से खुदकता था, इधर उधर चलता था, इसको मृगदारक विनोद कहते हैं। तो क्या ये सब लीला करते हुए अपने स्वजनों का वो शोक दूर करेगा, शोक दूर करते हुए आएगा? और उसके स्वजनों में सबसे बड़ा स्वजन मैं, क्या मेरा दुख दूर करते हुए आएगा? संभवती कार्यक्रम श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं, हाँ संभव है आएगा, इसको कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं पहले भी देख चुका हूं कि कभी कभी उसके साथ मैं खेल करता था, तो खेल में कभी कभी कह देता था, अरे हटो, तुम्हारे चलते मेरा कृष्ण भजन नष्ट हो गया, मैं तुमको छोड़ रहा हूं, जहां जाना हो जाओ, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। ऐसा कह करके जब मैं झूठी समाधि लगाता था, आंख झुझमुठ के बंद करके ध्यान का नाटक करता था कि अब हम कृष्ण का भजन करेंगे, अब जाओ जहां जाना, तुम्हारे चलते हमारा भजन नष्ट हो गया, ये हो गया, तो उस समय वो हरि बालक क्या करता था, वो आ करके अपने जल की बूंद के समान कोमल कोमल सिंह से मुझे खजलाने लगता था, अरे उठो मुझे चूमो और क्या कर रहे हो। तो इतना मुझ पर विश्वास करता है, वो जानता था कि मैं झूठा बोल रहा हूं, हम पर विश्वास करता था और जानता था कि झूठा ध्यान कर रहा है, तो हम पर विश्वास था, तब न सिंह से खुजलाता था, हमको धक्का देता था और फिर मैं उसको उठा लेता था, अरे मेरे बच्चा मेरे बाप, और फिर गोद में उठा लेता। तो ये इसमें कह रहे हैं राजर्षि भरत को अपने आप ही पता चल रहा है कि मैं झूठा भजन कर रहा हूं, अब ध्यान का नाटक कर रहा है, ध्यान में आंख बंद करके उसको देखते थे, कृष्ण को नहीं देखते, और चिंतन करते थे कि अच्छा अब आएगा और सिंह से मुझे खजलाएगा, धक्का देगा, क्यों जी क्यों रुठ गए। ऐसे छेली काया माम मृषा समाधिना।